सर कृष्ण स्वरूप श्री चक्की नंदन ने जोड़ करके हमारे मुख को एक बिंदु पान करा दिया है। आज उसी के जैसे हर संसार को कुछ प्रश्न देने के लिए यह हमारा उत्पन्न एक नवीन ग्रंथ है। कृष्ण के जो मकर मंडल है उनके समीप रह करके उनकी सेवा के लिए अतः कृष्ण ही कुछ बोले बताया मंथन करके उसमें से उज्जवल नीली मणि नीली मणि क्या है उसके सभी लोग अधिकारी नहीं उसके अधिकारी संसार में बिरले लोग ही हैं। क्यों अपनी रसांत सिंधु उसमें सर्व ज्ञानी जितने भी भक्त हैं उसमें डुबकी लगा सकते हैं। किंतु उज्जवल मणि उसका मंथन करके जो नील बड़ी निकली उसमें सबका अधिकार नहीं। इसके तीन कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया कि यद्यपि शांत दास संत दास पर चार वर्ष उनके अधिकारी हो सकते हैं किंतु ये जो मधु रस है इसके अधिकारी को देते मधु रस दिव्य ज्ञात है और दुख तर्क है साथ ही साथ में इसके अधिकारी बहुत जगत में मिलते हैं। क्यों पदरसों में जो चार पात्र जो रस हैं उसके लिए फकीर स्वामी सिंधु का उन्होंने प्रणय किया उसमें से जो जलमणि सबके लिए नहीं सभी इसके लिए योग्य नहीं यहां तक कि शांत इस रस के जो उपासक हैं वो भी इसमें योग्य नहीं लगा सकते। दूसरी बात मधुरस में भी जिनकी रुचि है मधुरस में रुचि है ऐसे अनेकों भक्त हैं किंतु उनका वह रस का संस्कार नहीं भले ही वो रस के विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचार इत्यादि भावों को पढ़ करके कुछ समझ सकते हैं किंतु रस में अवगाहन करें ये जब तक की संस्कार नहीं होगा ऐसे अनुभवी रसिक भक्तों के अनुगामित होकर के जब तक सबका साधन करना संभव नहीं इसलिए ये सत्य है। दूसरी बात एक और कहा अनेकों प्रकार के भक्त लोग हैं मधु रस में भी कुछ रुचि है कुछ कुछ हो सकता है कि संस्कार भी हो किंतु एक उसमें विशेष बात है वह यह है कि हम लोगों के जो ऐसे जो भक्त हैं जो एकांतिक राग मार्ग में जिनका उल्लंघन नहीं है राग मार्ग के द्वारा ही इस मधु रस में प्रवेश होता है दूसरा कोई और भक्त नहीं और ये कैसा है किसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए समाधि तुम उनो पद जल रसान स्वप किसी को देने के लिए राधा बाप को तो हस्तागत करने के लिए और इसी को देने के लिए आए ये राग पद तो इसमें और लोग जो है उनकी भी कई लोग होने के कारण में कुछ बैठी भक्ति का भी बदलना साधन, इसलिए उनका चित्त बुद्धि दर दर निश्चिंत रहता है। जब भी एकाग्र रूप से उसमें लगे, एकांतिक रूप में जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, उसमें रसिक वैष्णव के अनुगमन में जब ये कर सके तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं तो समझे विद्वान रूप में, मैं विद्वान नहीं, मैंने जो गुरु मुक्त जो सुना वही जो कहीं पर उन्होंने श्लोक के पहले ही हम शब्द का या हम हो शब्द का, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ब्रज में गोपुरु के अंदर में ईर्ष्या मान छल छंद ये क्यों है, साधारण भक्तों में ही तो छल छंद नहीं है, दूसरों को करने की इच्छा नहीं, ईर्ष्या नहीं, देश नहीं, कलह नहीं, इन गोपुरु में देखा जाता है। एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं चंद्रादी और श्रीमती राधिका जी, उनकी सहेलियों में कुछ कृष्ण को इधर से उधर करके ठगने की बात आती तो ये क्यों, जो साधकों में नहीं ये चीज है उसमें क्यों, उसी के लिए कहते हैं वहां बुद्धि के पहाड़ों अजीब तुम लोग रह सकते हो, जो इस चीज को नहीं समझते ये प्रेम का विचार है, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए प्रेम में जो ईर्ष्या मान होता है इसके समझने के लिए भी रूप गोस्वामी का अन्यथा नहीं समझ सकते। दूसरी बात कुछ लोग ये कहते हैं राधा कृष्ण में सब समय मिलन होना चाहिए कि प्रणम रस की आवश्यकता क्या है, ऐसे यहाँ पर भी बहुत से संप्रदाय हैं वो भी वैष्णव कहते हैं मिलन की सब समय जो होता है मिलन में ही दोनों का आनंद होता है, कि प्रणम क्यों हो, उसके लिए भी वही करते बिना प्रलंब के संभव की पुष्टि नहीं होती, ये कभी भी संभव नहीं, ये अप्राप्त रस है, अप्राप्त ये प्रेम है, इसलिए इसी सबके ये प्रेम के विकार है, ये भी बहुत उन्नत चीज है अप्राप्त। एक बात और इन्होंने की चैतन्य महाप्रभु की मनो किस्त उन्होंने पूर्ण किया किस रूप में पार्थिव भाव की उन्नत उज्ज्वल पार्थिव भाव की स्थापना कर, कैसे श्री चैतन्य मनोमित विद्या ने गुरु गोस्वामी इस रथ यात्रा में महाप्रभु के निकट खड़े थे और महाप्रभु साहित्य दर्पण का वर्ष लोग जब उच्चारण कर रहे थे तो दामोदर के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ पाता था, और ये छोटे से बालक हमारे रूप गोस्वामी उनके भावों को समझ करके साथ ही साथ में उसके तरले लेके श्लोक बनाया, वो क्या था भारतीय भाव। तो जो लोग ये कहते हैं हमारे शास्त्रकार लोग भी कहते हैं ये भारतीय भाव जगत के नायकों की जरूरत है, जागतिक नायकों की, इसलिए हमारे सब साहित्य दर्पण या और जितने भी हैं साहित्यकारों ने इस अपकथ के भाव को जागतिक नायक के लिए उन्होंने खंडन किया है, न कि पार्वती और माती कृष्ण, जहाँ पर कृष्ण है अपने स्वामी से गुरु कृष्ण है, जहाँ पर ये नायक है और जहाँ पर नायिका की गोपियां हैं और उनमें भी प्रमुखता श्रीमती राधिका जी नायिका है, वहां पर ये दोष लिए नहीं, वहां पर परम शोक लिए सब बातों का बहुत सुंदर उद्देश्य रूप गोस्वामी ने इसकी स्थापना है वो दूसरे के लिए संभव बन गई, क्यों किया कैसे किया प्रयास के लिए रूप गोस्वामी उन्होंने अपने कालीगढ़ प्रांत से उनके पर में कृपा संचालित किया और अपने वचनों से उनके अंदर में प्रेम की स्फूर्ति की और रस का एक बिंदु अपने रसा में सिंधु का एक बिंदु उनके रूप में जोर से दिया और शिवपुरी धाम में अपने जितने परिकर से नित्यानंद प्रभु साधन भट्टाचार्य तो उस दामोदर राय रामानंद इत्यादि से भी प्राप्त हो इसके ऊपर में आप लोग पिताधर संचरित करें जो हमारे मन की भावनाओं को जगत में रूप स्वामी को पत्नी मत समझना जागतिक अलंकारिक रचयिता मत समझना ये तो ऐसे रूप स्वामी है जो कि ललिता विशाखा के अपेक्षा भी ये विषयों में कृष्ण के और राधा जी के अत्यंत प्रिय है यहाँ पर भी सरुदान होता रहा रामानंद अथवा ललिता और विशाखा जाने में कुछ संकोच तत्व है राधा कृष्ण के लिए विपत्त लीलाओं में उधर रूप को स्वामी का अधिकार है इसी से रूप को स्वामी का पद पर हम लोग को स्वीकार करते हैं आज समय हो गया है अभी आपको ना भी बाकी है इसमें आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ क्योंकि ये कल सुनने रखता आज ही परमात्मा का सबसे समाप्त कर Thank you.
Yeah. फिर वहां प्रभु जी की आज्ञा से राम के लिए गांव से जब के चलते हुए प्रयाग में पहुंचे तब से वहां प्रभु जी ने उनकी उनके ऊपर कृपा दर्शन से कहते हुए भक्ति रस समुद्र के एक कुंड चिखाया और भक्ति रस के सिद्धांत तत्व रहस्य को बताया बता करके बोले कि वृंदावन में जाओ लुप्त तीर्थ उद्धा श्री विग्रह प्रकाश भक्ति ग्रंथ प्राणायाम वैष्णव सदाचार प्रवर्तन ये चारों काम करने का है। तो इन कामों को पूर्ण करते हुए श्री रूप गोस्वामी में भाग ले महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को भोजन किया। जिस विषय को वर्णन करते हैं तो आप जानते हैं जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भक्त दास प्रमण ऐ गोसाई जब प्रज कैलवास राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश राधा कृष्ण के मधुर लीलाओं को भक्ति रस तत्वों को उन्होंने इस प्रकार विवेचन किया ऐसा अभिनव विवेचन न पहले तो कभी हुआ है न होगा। जो श्रीमद भागवतम रसमालय परंतु वह अत्यंत गुण रहस्य पूर्ण दूसरों को समझना बड़ा कठिन शिव रूप गोस्वामी बाद में उन भागवतों के श्लोकों को खाते हुए भक्ति रस का विवेचन किया जहाँ अन्ना विलासिता सुंदर में उत्तम भक्ति की परिभाषा दे दी और वहीं से वर्णन करते हुए मुक्ति को निराकृत कर कर्म ज्ञान योग तपस्या मुक्ति साधना सभी को परित्याग करते हुए विशुद्ध भक्ति का वर्णन किया जिसमें यह भी दिखाया कि भक्ति के नौ सोपान एक साधक भक्त के लिए नौ सोपान में पहुंचना जरूरी है जिसमें कि श्रद्धा साधु संग गुरु पदार्थ भजन क्रिया अर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति इसके पश्चात भाव सिद्धि एकमात्र साधक के जीवन में प्रयोजनीय है। साधक भक्त वही साधक के द्वारा रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए जितना भी आगे बढ़ेंगे भजन साधन करेंगे इस साधन भक्ति के द्वारा सभी अनर्थ दूर होगा। अनर्थ दूर हुए बिना रस का आस्वादन कदापि संभव नहीं है इसलिए भक्ति रस को चखाने के लिए श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति विशेष जरूरी है। विषय छड़िया कवे शुद्ध भवे मन कवे अभी हे रव श्री वृंदावन सारी विषय वासना समस्त आसक्तियों को छोड़ने पर तब वृंदावन धाम का दर्शन होता है और इसी प्रकार ऊपर रघुनाथ पदे सही की आकृति कव्यावे बुझो से जुगत पीड़ित रूप रघुनाथ जी के चरणों में आकृति मिलती होगी तब पहले हम समझे इसके बाद में आश्वासन पहले जानना सुनना समझना विशेष जरूरी है। इसलिए आसक्ति के साथ में जब भजन होता है भाव की सिद्धि होती है। अतः कहते हैं भाव की सिद्धि कैसे होगी साधन तो अपनी चेष्टा से करके आगे बढ़ सकते हैं परंतु भाव अपनी चेष्टा से कदापि संभव नहीं। वह नित्य सिद्ध वस्तु कृपा सिद्ध है भक्त कृपा एवं भगवत कृपा जब तक ये कृपा नहीं मिलती है तब तक भक्ति संभव नहीं। इसलिए ऐसे भाव भक्ति जब हृदय में उदय होता है तब हृदय शुद्ध सत्य राधा जी की करुणा के द्वारा विशेष घनता को प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति जब राधा जी के प्रति स्नेह मोह का प्रगाढ़ रूप से होता है तब प्रेम होता है और ये सब की स्थिति को पार करके जब भाव स्थायी हो जाता है और उस स्थायी भाव के ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक संचारी इन सभी भावों का संक्रमण होता है। भाव जब हृदय में प्रकाशित होता है तब रस उत्पन्न होता है। रस भी ऐसे वैसे नहीं होता जो कि वक्ताओं के मुंह से हम लोगों ने सुना है छाया रत्याभास प्रतिबिंब रत्याभास एवं शुद्ध रति मायावादी लोग और कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी और साधक सहजी सचिव है कि इन लोगों में भी कृष्ण की कथाओं को सुन करके भाव होता है, आंखों से आंसू बहता है, यह उसको शुद्ध भाव कहा जाएगा? वह कदापि संभव नहीं है। इसलिए कहा प्रतिबिंब रत्याभास छय रत्याभास वह भी कभी शुद्ध नहीं। शुद्ध रति तभी होता है जब कृष्ण के प्रति फिक्स मूड हो जाता है, स्थायी भाव भाव स्थिर होता है। उस समय सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात ही तद्भाव निष्ठुराचार्य भजनों का अनुसार साधक शरीर से और सिद्ध शरीर से भजन करते करते वो भाव प्रकट होता है। और उस भाव में अष्टसात्विक भाव, इस प्रकार के संचारी भाव, इस प्रकार के अनुभाव, ये सभी भावों का उद्भेदन होता है। तब भाव संधि, भाव उत्पत्ति, भाव संधि, भाव शांति, भाव सावल, ये सभी भावों के पर्याय आ जाते हैं। एक साधक भक्त किस रूप में भजन करते हुए भक्ति रस का आस्वादन करें, श्री रूप गोस्वामी पाद लें इसकी उपदेशा को दिखलाते हुए श्री भक्ति रसा में सिंधु एवं श्री उज्जल निर्मणि ग्रंथ को प्रकाशित किए। इसमें क्या वर्णन होता है? भक्ति रस में डूबे हुए हर प्रकार के साधक उस रस को आस्वादन करते हैं, अपने अपने इष्ट देवता और उन्हीं के पार्षदों परिकरों का चिंतन करते हैं, उसी रूप में डूबे रहते हैं। अब जब आगे चलते हैं मधुर रस में, तब उन्नत उज्जवल मधुर रस का वर्णन होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने हमने देखा ब्रह्म पुराण में एक दिन ये सब सूत्र कोट रूप में वर्णन हुआ है। सभी भावों का एक एक सूत्र रूप में वर्णन हुआ, वहां कोई विस्तृत व्याख्या भी नहीं की गई। तो ये सब को उठाते हुए साहित्य का इस प्रकार विवेचन किया है कि एक व्याकरण शास्त्र के रूप में भक्ति रसा में सिंधु उज्जल निर्मणि को दिखाया जिसमें भक्ति रस का विवेचन है। एक साधक दूसरा सिद्ध, सिद्ध स्थिति में होता है प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव 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 आपने सुना है। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि वृंदावन में नित्य विहार है, ये बात सत्य है। नित्य विहार के नित्य लीला का आस्वादन करते हैं और जितने भी संप्रदाय वैष्णव हैं और समुदाय के वैष्णव के लीलाओं का चिंतन करते हैं, नित्य विहार की लीलाओं का देखते हैं। परंतु महाप्रभु जी कौन से भाव का आस्वादन किया? हमारे गुरु वर्गीय गोस्वामियों ने कौन से भाव का आस्वादन किया? जब जब जटना जी को दर्शन करता है तब तब कुरुक्षेत्र में भाई वाजी कृष्ण दर्शन विरह भाव में डूबे राधा जी के विरह विप्रलोभ आस्वादन करते हुए महाप्रभु जी ने दिखाया कि विरह के माध्यम से भावों की चमत्कारिता भावों का विशेषत्व प्रकटित हुआ है। क्योंकि वेदन चेतावन में भी वर्णन हुआ है वैकुंठाते नाही जैसे लीला प्रचार सही सही लीला करीब जाते लोग हर चरण का। इस दोहे पर इस छंद पर बहुत से वाद विवाद बहुत से आपत्तियां आ गई है। बहुत से लोग बहुत प्रकार के विचार दिखा देते हैं परंतु वास्तव स्थिति क्या है? श्री जी गोस्वामी पाद कहते हैं वहां नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य वृंदावन और भोग वृंदावन में क्या अंतर है, क्या स्थिति है? वहां पर राधा कृष्ण का नित्य मिलन है, नित्य विहार है, वहां वहां पर कृष्ण कहीं से बाहर कभी जाते नहीं पर कभी यहां भी सेम है। तो यहां और वहां कभी तो कृष्ण बाहर जाते नहीं है, हमेशा ही जाते हैं। तो यहां प्रकट लीला में एक विशेषत्व है, एक चमत्कार है जो वहां नहीं दिखेगा, वैकुंठ में भी नहीं दिखेगा, नित्य वृंदावन में वहां तो सुदूर प्रवास नहीं है, इसलिए वो सुदूर जब प्रलम्ब वहां प्रकाश रूप में नहीं दिखेगा, भाव रूप में है, परंतु यहाँ पर प्रकाश रूप में दिख जाता है। जब कृष्ण वैसे मथुरा के जा रहे हैं तब उस समय सुदूर विरह प्रलम्ब में राधा जी जो कि वृषभान नंदनी राधा है गोपी अपनी वनवास में पहुंचते हैं। मोदर इत्यादि भावों का प्रकाश श्रीमद् भागवत में जो विवेचन हुआ है पूर्व राग के पश्चात गोपियों के मिलन को दिखाया गया जो कि रास लीला है और उसमें प्रेम स्नेह मान प्रण राग अनुराग भाव अनुभाव तक दिखाया गया इससे आगे नहीं दिखाए, और उससे आगे जब कि माथुर हमें रूढ़ अधूर मोहन मादन आदि दिव्य मादमय भावों को प्रकाशित किया श्री अनुकूल से बात इन सब विभावों को श्लोकों के द्वारा उत्थापन करते हुए विचार में चिंतन में दिखाया श्री दुर्जल मणि में, और उसमें यह दिखाया सुदिन विरह के प्रलोभ को जिसमें उन्नत उज्जवल मधुर रस का विवेचन होता है माथुर विरह के यही चमत्कारिता जब वहां नहीं दिखेगा यहां दिखेगा। इसलिए साधन स्थिति में साधन करते हुए भक्त लोग भी सबका आस्वादन करते हैं, यहाँ जो संभव है वो संभव वहां नहीं होगा, वहां तो एक एक लीला में डूबे हुए हैं उनको भक्ति रस का आस्वादन किया जिस रस में डूबे हुए उसी में आगे और कुछ नहीं दे सकते, यहाँ सभी प्रकार के अनुभव अनुभूति होती है। इसलिए श्री अनुपम स्वामी पाद करते हैं चैतन्य ने जिस भाव का आस्वादन किया और उसी को दिखाया समर्पय तो उन्नत उज्जवल रस सौभक्ति स्त्रिय उन्नत उज्जवल रस मात्र विरह के बिना ये उन्नत उज्जवल रस प्रकाशित होना बड़ा कठिन है। इसलिए सुदंड विरह के प्रभु के द्वारा उन भावों को प्रकाशित किया, फिर उन्होंने भक्तों के अंत ग्रह को आरती को शांत करने के लिए धैर्य बांधने के लिए ललित माधव विरत माधव नाटक की रचना कर दी, उसमें कुछ विरह को समित करने के लिए परंतु भक्तों के अंदर में जब सुदीर्घ विरह विप्रल भाव का किंचित अंश भी प्रकाशित हो जाता है उस विरह के माध्यम से राधा कृष्ण की प्राप्ति उनसे मिलन संभव होता है। इसलिए श्री रघु गोस्वामी पाद ने अंत में जा करके मिलन का वर्णन करते हैं, विरह स्थिति में सभी भावों का वर्णन करते हुए जो कि दिव्यनुमा चित्र योग मोह मादक इन सभी भावों का वर्णन हुआ है। विरह में मिलन होता है और मिलन में विरह होता है, भावों की चरम पराकाष्ठा हो जाती है। राधा जी निकट में हो करके कृष्ण को देखती है, समझती है कि बहुत दूर हो गए बहुत दूर चलेंगे, और जबकि बहुत दूर में है उस समय राधा जी कृष्ण के विरह में अधीर होकर के देखती है कि कृष्ण निकट में है। तो ये सब की बलवान की स्थिति श्री रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है, जैसे कि मोहन की स्थिति में वर्णन होता है ना सेवा कुंज के विषय में जहाँ राधा जी सखियों से कहती है अरे सखियों कारण तब कृष्ण यदि कृष्ण मई तो आगे यदि कृष्ण मेरे पति जी फिर राजेश्वर हो जाए तो अब क्या करने का है, इसके लिए लोग बिछा है गले का हार और मैं पहन करके क्या करो ये तुम लोग जब दुर्लभ व्यक्ति मिलेंगे तब उनसे मिलन होगा तो ये हार उनके वक्षस्थल को स्पर्श करेगा। ललिता जी से कहती है ललिते मेरे मायने पर इस शरीर को कमाल स्कंदे सखी निहाल कमाल के जाल में मुझको बांध के रख दिया जिसको कहते हैं ना को रायो रखा वहां पहुंच जाए जहां पर श्याम सुंदर है उनकी सेवा में समर्पित हो जाए और ये शरीर कमाल के डाल में बांध देगा इसी के साथ चिरा अलंकित हो करके सदैव को पड़ा रहे इसको बुलाना नहीं पानी में बहाना नहीं भावों की पराकाष्ठा। जब राधा जी मूर्छित हो जाती हैं तब तो वहां द्वारकापुर में कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में विलास परायण होकर के भी वहां उनकी मूर्छा हो जाती है इन सभी भावों का विवेचन किया। इसी प्रकार और जो आगे विवेचन है वो आगे हम वर्णन करेंगे जो कि नित्य मिलन में भी दिखाया इसके विरह के पश्चात मिलन है और उस मिलन में दिखाया है जैसे कि श्री मधुरीचार्य ने इस पद को गाते हुए महाप्रभु जी को सुनाया जो कि राधा जी के भाव का वर्णन है। ब्रज में श्री कृष्ण का आशीर्वाद और ब्रजगोपियों के साथ में नृत्य विहार नृत्य विहार सिखाया, जहाँ राधा जी वर्णन करती है वो सखी आज दयानंद यो चिरति है माधव मंदिर हो श्री तेरा यो रानी पिया गिर सिरवा परिसर छत पिया दरिया अचल भरिया जदि महानिधि पाए तब हम पिया कहती है। अरे सखी आज तो आनंद का कोई शेष नहीं है, सीमा नहीं है, क्योंकि आकर भर करके कोई वहां से देते हैं तो भी मैं अपने प्राण के तरह को दुर्देश नहीं पूछा। एक एक भावों की पराकाष्ठा है, मैं इसी प्रकार सुधीर जो विरह विप्रलंब था और उस विरह के माध्यम से हमारी अपनी दूरी को समझना है कि हम तीव्र विरह उत्कंठा के साथ उनके साथ मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्त यही रखता हूँ और कल समय होगा आगे बढ़ूंगा। अपन सालों तक चित्रवाद सुंदर जगत का रखता हूँ पारण को इसका
तरह में भक्ति का संचार नहीं है। अतः भक्ति काम की प्रवृत्ति की तरह से एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, वह कृपा साध्य वस्तु ही है। वह न तो साहसिक है, स्वाभाविक तो है, निज प्राप्त तो है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि कौतुक प्रयास हो, अरे अपुर बालको ऐसा कौन सा जो अरे प्रयास है। श्री प्रभु तो तुम सबके हृदय में विराजमान हो, जो सबके हृदय में विराजमान है वह जल्दी से ही प्रकट हो जाएगा। सबके हृदय में प्रभु मानो विराजमान है, अंतर्यामी है। प्रभु भले विराजमान हो परंतु प्रभु की कृपालुता का अनुभव करना, प्रभु की भक्ति का अनुभव करना, यह हर एक के बस की बात नहीं है। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान है, परंतु अंतर्यामी में निष्ठा सबके हृदय में प्राप्त नहीं है। ज्ञान होना एक अलग चीज है और ज्ञान निष्ठा होना अलग चीज है। भक्ति क्या है इस बात का ज्ञान होना यह जीवन को कल्याण करने वाला नहीं है। भक्ति में निष्ठा होना यह जीवन का कल्याण करने वाला है। मैं भक्तों की बात नहीं कह रहा हूं, कुछ देर के लिए ज्ञानियों की बात कहेंगे। तो ब्रह्म ऐसा है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आदि ये जो विवेचन है, यह विवेचन किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। यह ज्ञान मात्र किसी को मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं होता है। ज्ञान में निष्ठा होना, अखंडाकारता वृत्ति को प्राप्त करना और एक ज्ञानी के दृष्टि से आम ब्रह्मास्मि आदि जो स्थिति है उस स्थिति को